ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। मैंने आप सब लोगों को प्रणाम किया, इसका कारण यह है कि आप सब लोग वारकरी हो, पंडरपुर की वारी करने वाले हो, और आज हम यहाँ पर पंडरपुर कैंप के सेवा के उपलक्ष में मिल रहे हैं। 1990 में हमारी सबसे पहले पंडरपुर का कैंप हुआ था, और तभी हमने केवल 625 मरीज देखे थे। आज हमारे कैंप में 40,000, 50,000, कभी कभी 75,000 मरीज भी देखते हैं। उस समय कुछ सैकड़ों लोगों के लिए हमने प्रसाद बांटा था। आज दशमी के दिन 1,00,000 खिचड़ी प्रसाद, एकादशी के दिन एकादशी का 1,00,000 लोगों के लिए प्रसाद, और उपवास छोड़ने के बाद द्वादशी के दिन फिर 1,00,000 प्रसाद लोगों के लिए। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान ने शायद हमारी सेवा को पसंद किया, इसलिए भगवान और सेवा दे रहे हैं। जब भगवान को हमारी सेवा पसंद आती है कभी भी लाइफ में, तो भगवान उस सेवा को बढ़ा देते हैं, और वो भी अच्छी करेंगे तो फिर और बढ़ा देते हैं। तो सेवा बढ़ना ये भगवान की संतुष्टि का एक लक्षण है। तो ये हमारा सद्भाग्य है कि पांडुरंग भगवान ने हमको सेवा दिया है, और आज से नहीं 27 साल से सेवा दे रहे हैं, हर साल हम लोग वहाँ जाते हैं। और पांडुरंग भगवान इतने दयालु हैं, विट्ठल भगवान, कि और अधिक और अधिक और अधिक संख्या में लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो 90 में थे वो, उसमें से कुछ लोग आज हैं। आज जो हैं वो शायद पिछले साल में हॉस्पिटल ज्वाइन किया होगा, वो भी आज इस साल कैंप में जा रहे हैं। इसका मतलब इस संस्था से नए नए लोग जुड़ रहे हैं, और सब लोग इस सेवा में सम्मिलित हो रहे हैं। और केवल ये हॉस्पिटल का एक जॉब है, या हॉस्पिटल से आप लोग वॉलंटियर के रूप में जुड़े हैं और आपको वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये साक्षात आप लोग और विट्ठल भगवान के बीच का ये आदान प्रदान है, ये रिश्ता है आपका। इट इज़ पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड विट्ठल भगवान, यही हमारी धारणा है। कल ही हम जयपुर के यात्रा के विषय में चर्चा कर रहे थे, तभी भी हमने यही डिस्कस किया था कि हम लोग जयपुर यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन हमारा राधा गोविंद भगवान से ये आदान प्रदान है कि हम उनके घर में जा रहे हैं, और वो हमको रखेंगे, और वो हमको खिलाएंगे, और वो हमको दर्शन कराएंगे, जो जो उनकी मर्जी है वो। हम लोग बस वाले से भी बात करेंगे, और भोजन वाले से भी बात करेंगे, और होटल वाले से बात करेंगे, लेकिन हम तीनों जगह पर केवल राधा गोविंद जी से ही बात कर रहे हैं, वही हमारे रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम पंडरपुर जाएंगे तो हमारे डॉक्टर चौधरी सचिव प्राण प्रभु, वो प्रांताधिकारी से बात करेंगे, IAS ऑफिसर से बात करेंगे, प्रसाद वालों से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन वो आप सबके और उन सबके माध्यम से किससे बात कर रहे हैं, विट्ठल भगवान से ही बात कर रहे हैं। और विट्ठल भगवान के जो भक्त लोग वहाँ पर आने वाले हैं उनकी सेवा के लिए उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और विट्ठल भगवान भी ये बस वाले के वजह से, IAS ऑफिसर के माध्यम से, और प्रांताधिकारी के माध्यम से, और इनके माध्यम से, उनके माध्यम से, विट्ठल भगवान ही इनसे बात कर रहे हैं। जब हमारी ये चेतना होगी ना, तो विट्ठल भगवान भी प्रत्यक्ष आपसे संपर्क करेंगे। उनको जरूरी नहीं कि वो पुंडलिक के लिए खुद आए थे, वैसे आपके लिए भी खुद आए हैं, जरूरत नहीं है। वो कितने मार्ग से और कितने माध्यम से आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और आपको ये आत्मा के स्तर पर अंदर अनुभव होगा कि हाँ विट्ठल भगवान ने हमको रिस्पॉन्स दिया, ये उन्हीं की कृपा है, ये उन्हीं का उनके वजह से हो रहा है। ये एक बात हो गई। तो आप सब लोगों को विनती है कि यहाँ पर कुछ 50 लोग बैठे हैं शायद, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं 300 लोगों से बात कर रहा हूँ जो आगे 1 तारीख की रात को इसको देखने वाले हैं। सब लोगों को मेरी ये विनती है कि आप सब लोग विट्ठल भगवान के संपर्क में रहो और उसी भावना में काम करो। और पंडरपुर का एक और विशेष चीज़ है, जैसे हर धाम की एक विशेष चीज़ होती है, उसको कहते हैं धाम की चेतना। जैसे वृंदावन धाम वो है राधा और कृष्ण के प्रेम का धाम है वो, तो पंडरपुर का चेतना क्या है, व्हाट इज पंडरपुर कॉन्शियसनेस। पंडरपुर की चेतना ये है कि पंडरपुर में भगवान भक्त के दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथपुरी का उत्सव भी आज है, जगन्नाथपुरी का महात्म्य क्या है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को देखने के लिए भगवान को देखने के लिए भक्त यहाँ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं नेत्र उत्सव, और जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए वहाँ जाते हैं। उस धाम का महात्म्य, और भी कई महात्म्य लेकिन प्रधान महात्म्य है दर्शन और प्रसाद और भगवान का विरह भाव वृंदावन के प्रति। तो पंडरपुर की चेतना क्या है, पंडरपुर में भगवान भक्त को मिलने आते हैं। यहाँ तक कि इतनी महिमा है कि पुंडलिक की देखिए आप चेतना कैसे है। पुंडलिक ने अपने माता पिता जो वैष्णव भक्त थे उनकी सेवा में इतना हृदय लगाया, इतना मन लगाया, इतना समय लगाया कि द्वारका से भगवान आए। एक जगह पर लिखा है कि भगवान द्वारका से आए, एक जगह में लिखा है कि भगवान धेनुकासुर का वध करके वृंदावन से आए। इसको कहते हैं कल्पभेद, यानी एक कल्प में वो वृंदावन से पंडरपुर आए और एक कल्प में जो लीला कर रहे थे दोबारा तो उसमें द्वारका से भगवान पंडरपुर आए। लेकिन दोनों तरफ पंडरपुर के लिए इसलिए आए, बहाना ये था कि उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी थोड़ा नाराज़ होकर चली गई थी और वो दिंडिर वन नाम के वन में, यानी आज का जो पंडरपुर है वहाँ पर तपस्या कर रही थी, तो उनको मिलने के बहाने वो निकले। लेकिन भगवान जब आते हैं तो एक समय पर कई काम कर लेते हैं। उनको पता था कि मेरा भक्त जो है पुंडलिक अपने वैष्णव माता पिता का सेवा कर रहा है। बहुत लोग उसको बोलते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखो माता पिता की सेवा किया तो पुंडलिक भगवान पुंडलिक को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान आए। थोड़ा इसमें एक अपूर्णता है जिसको पूर्ण करके समझना जरूरी है। भगवान विट्ठल पुंडलिक को केवल माता पिता की सेवा किया इसलिए लौट के नहीं आए मिलने के लिए, क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव भक्त थे भगवान के, इसलिए वो आए। अगर हमारे माता पिता शराबी हैं, मांसाहारी है और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे माता पिता की सेवा करेंगे तो भगवान आएंगे ये मत समझना। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी क्योंकि आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, लेकिन जब हम स्वयं भक्त हैं और पुंडलिक जैसे हमारे माता पिता भी भक्त हैं तब जाकर ये चमत्कार हो सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शराबी मांसाहारी जुआरी माता पिता अपने बेटे को बोलते हैं देखो देखो आप पंडरपुर की वारी करने जा रहे हो, इधर माता पिता को छोड़ के उनकी सेवा करने जा रहे हो, ऐसा बताते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य यही है। तो पुंडलिक पहले बहुत पापी था, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। पुंडलिक इतना पापी था कि उसने कोई पाप छोड़ा नहीं था, माता पिता तो एकदम कसपट के समान वो व्यवहार करता था उनसे, पूरा निग्लेक्ट माता पिता को। लेकिन एक समय पर कुक्कुट स्वामी नाम के एक महान संत थे, उनके आश्रम में जब वो पहुंचा तब उसको कुछ अनुभूतियां हो गई, पश्चाताप हो गया, लौट के माता पिता को ढूंढ के लाया उसने और फिर घर पे सेवा किया उसका। फिर वो उस सेवा में इतना रत हो गया, माता पिता तो जन्म से पहले से ही वारकरी और भगवान पांडुरंग के भक्त थे, फिर उन्होंने जो सेवा किया उनका वो इतना हृदय शुद्ध हो गया उसका कि वो उसी में रत हो गया। खाना पीना, पैर मलना, उनके मसाज देना, उनको हर तरह से आदरपूर्वक व्यवहार करना, देखभाल करना, हर तरह से उनको उसने संतुष्ट किया। उससे प्रसन्न होकर भगवान वहाँ पर आए, और जब भगवान वहाँ पर आए तो उसके दरवाजे की तरफ पीठ थी, भगवान दरवाजे में प्रकट हो गए। उसको आश्चर्य हुआ कि अचानक प्रकाश कैसे आ गया रूम में, अब मेरी झोपड़ी में प्रकाश कैसे आ गया। तो भगवान ने कहा पुंडलिक देख मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। तो पिंडलिक ने पीछे भी मुड़कर नहीं कहा, एक ईंट को फेंका और कहा आप आए हैं बहुत धन्यवाद, आप जरा रुकिए तब मेरी सेवा पूरी होगी तब मैं मुड़ूंगा आपकी ओर। तो इंद्र का एक लीला है, उसके पीछे इंद्र को शाप मिला था, वो कुछ अपराध की वजह से ईंट बने हुए हैं, तो वो ईंट फेंकते हैं तो वो ईंट इंद्र ही थे, और इंद्र को उस शाप मिला था कि जब भगवान तुम पर खड़े हो जाएंगे ईंट के रूप में तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही ईंट थी वो जो उसके घर में पड़ी थी, वो उसको फेंकते हैं तो भगवान उस पर खड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना भगवान एक साथ में कई उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं तो इंद्र का भी उद्धार हो जाता है उसके अंदर। लेकिन भगवान वहाँ पर कमर में हाथ रखते हुए बहुत देर तक खड़े रहते हैं, अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग वर्णन है कितने समय खड़े रहे वो, लेकिन उसका सार इतना ही है कि बहुत समय खड़े रहे वो। भाई भगवान को कोई खड़ा करे तो चलेगा क्या? हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हॉस्पिटल में कभी 2 घंटा 3 घंटा कभी 4000 घंटा भी बैठते हैं, मरीज है वो डॉक्टर है बैठना पड़ेगा आपको। डॉक्टर भी जाता है डॉक्टर के पास कभी, तभी भी उसको डॉक्टर के लिए इंतजार करना पड़ता है, मेरा खुद का अनुभव है। और यहाँ पर जिनके दर्शन के लिए सब लोग तड़प रहे हैं वो खड़े हैं वेट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बात होगी ना उसके अंदर। समझो हमारे लिए भगवान आ गए, हम बोले भगवान यार रुको मैं मेरे बीवी से बात कर रहा हूँ, भगवान अंतर्धान हो जाएंगे तुरंत, आप मुड़ के देखेंगे तो भगवान गायब रहेंगे लेकिन भगवान रुके रहे। इसका कारण यह है सेवा की रति, सेवा में जो रथ होता है वो भगवान को बड़ा प्यारा होता है। भगवान क्या कहते हैं, मद भक्ता पूजा व्याधिका, मेरी जो पूजा करता है मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे भक्त की जो पूजा करता है वो मुझे मेरी पूजा करने वाले से भी अधिक प्रिय है। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जी थे, उनको लोग जब कहते थे कि आप कौन हो तो कहते थे मैं भगवान का भक्त हूँ, तो वो उनको 2-3 मिनट में निपटा देते थे। अगर कोई बोलेगा कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ, भक्तों का दास हूँ, कृष्ण के भक्तों का दास हूँ, तो तुरंत उसके समय बैठ के बहुत समय बिताते थे, क्योंकि वो ये मैसेज सबको देना चाहते थे कि भगवान को उनकी सेवा करने वाले से उनके भक्तों की सेवा करने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं आपके घर पर आया और आपका बहुत तारीफ किया आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपके घर पे आया आपको मैंने थोड़ा सा हरे कृष्णा किया और आपके बेटे के लिए इतना प्रेम किया, दुलारा उसको चॉकलेट दिया उसको प्रेम किया, तो आपको ज़्यादा पसंद क्या आएगा? ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप पर बेटे पर मैं प्रेम करूँगा तो आपसे प्रेम करने से ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और भगवान भी हमारे आप जैसे ही है, भगवान भी व्यक्ति हैं हम भी व्यक्ति हैं, मुझे जो प्रिय है उसको अगर हम हित करेंगे, उसको पसंद वाली उसको प्रसन्न करने वाली क्रिया करेंगे तो मुझको प्रसन्न करने वाली क्रिया से मुझे वो चीज़ पसंद आएगी, क्योंकि अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं वो, इसलिए भगवान खड़े हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी जब पंढरपुर में गया था तो मन में एक छुपी इच्छा होती है कि मैं पंढरपुर का दर्शन भी भगवान का हम करेंगे बीच में सेवा में 2 घंटे के लिए गायब हो जाएंगे और दर्शन करके आएंगे, ये मैं मेरी बात कह रहा हूँ, सब लोगों को रहता है, उसमें कुछ पाप नहीं है। अभी जब बीच में मन में मेरे विचार है कि मैं जाके बीच में जरा मांस खा के आऊँगा तो ये तो पापी इच्छा होगी, ये तो भगवान को दर्शन करने की इच्छा है। बरसाने में भी सेवा में आते हैं तो इच्छा होती है कि श्रीजी मंदिर का दर्शन करके आ जाए, लेकिन हम खास करके बताते हैं, आचार्य बताते हैं, गुरु जी हमारे बता रहे हैं, वहाँ के संत लोग बता रहे हैं जो आ रहते हैं, वो कहते हैं जो आपके पास में सेवा लेने के लिए आ रहा है उसी के रूप में उस जगह के देवता देव आपकी सेवा लेने आ रहे हैं। मतलब बरसाने में अगर सेवा कर रहे हैं तो राधा रानी और श्याम सुंदर जी उनके रूप में आपकी सेवा लेने के लिए आ रहे हैं, अगर आप पंढरपुर जा रहे हैं तो उन वारकरियों के रूप में पंढरपुर के भगवान आपकी सेवा लेने के लिए आ रहे हैं, और उन वारकरियों के चेहरे पर अगर आप सेवा करने से बाद में मुस्कुराहट उत्पन्न करते हो, आपको देखकर वो मुस्कुराते हैं, इसका मतलब साक्षात विट्ठल भगवान आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उतना आनंद आपको उनकी मुस्कुराहट से आएगा जितना विट्ठल भगवान का मुख दर्शन करके भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक पावती है आपके लिए, एक रसीद है कि आपने जो यहाँ पर आके कार्य किया है वो परफेक्ट है। और वो लोग कौन है जिनकी आप सेवा करने जा रहे हो? अबे आप पेपर में और टीवी पे और व्हाट्सएप पे कितने फोटो आपको आए होंगे अब तक, है ना? कहाँ से निकले वो? पंडरपुर, आलंदी, पुणे, किधर किधर से निकले वो? और शुरू जब किया था तब बहुत गर्मी और बहुत पसीना, और अभी बीच में, अभी पहुंचे नहीं है, अभी बीच में घनघोर वर्षा हो रही है, कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं है, बस नाचते हुए पांडुरंग के नाम के मस्ती में मस्त होते हुए चल रहे हैं पंडरी की ओर। और कितने लोग निकले हैं? लाखों और लाखों और लाखों लोग निकले हैं। हम जब पहली बार गए थे तभी वहां पर बोलते थे कि पंडरपुर में 7 लाख लोग आते हैं, आज पंडरपुर में 20 लाख लोग आते हैं। सब लोग पैदल आते हैं, सब लोग गरीब लोग आते हैं, उसमें कोई अमीर आदमी कोई करोड़पति लोग चल के नहीं आते। और करोड़पति आता है तो ये सोच के आता है कि मैं बड़ी गाड़ी में आऊँगा और मेरा कुछ DCP ECP का वसीला होगा तो मैं वसीला दूंगा और पैसे फेंकते जाऊँगा और दर्शन करके चला जाऊँगा, ये उसका भाव रहता है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ जो ऐसे भाव से आता है उस पर पांडुरंग भगवान की कृपा नहीं होती है, निश्चित रूप से नहीं होती। तो ये लोग जो इतने गरीब हैं, हम लोग मराठी में कहते हैं ना हाथावर पोट, मतलब हथेली पे जिनकी जान है, आज काम नहीं करेंगे तो आज की रोटी नहीं आएगी, रोजी रोटी पे जीते वो। उनकी खेती भी कभी बारिश नहीं होती, कभी होती है, कभी दुष्काल पड़ता है, क्या क्या तकलीफ होती है। तो वो लोग अपना सारा जो, तो मराठी में कहते हैं तटपुंजा, यानी कि छोटा सा जो कुटुंब है उनका, धन धन की व्यवस्था है, वो सब छोड़ के सारी व्यवस्था करके निपटा के कुछ दिन के लिए चलने के लिए वहाँ पर आते हैं। हम भी अगर छुट्टी लेते हैं तो गिनती करते हैं, 3 दिन छुट्टी लूंगा तो कितना सैलरी लॉस होगा, फिर 3 दिन CL और 3 दिन विदाउट पे तो कितना पगार कम मिलेगा महीने के एंड में, है ना? इतना गणित करते हैं हम लोग। तो वो लोग कई दिनों के लिए ये गणित छोड़ के आ जाते हैं, निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, और कोई सुविधा नहीं उनके लिए। उनको ये भी पता नहीं है कि रस्ते में भोजन कहाँ मिलेगा, कुछ रुकी सुकी लेके आते हैं, पौवा चिवड़ा दही, वो भी खत्म हो जाता है कुछ दिन के बाद में। मतलब जो भी लोग रस्ते में खिलाएंगे, कोई भंडारा करेगा, कोई धनी आदमी को दान देगा तो मिलेगा तो खाएंगे लाइन में खड़े रह के। लेकिन जैसे बाकी जीवों का कैसे होता है, कुत्ता बिल्ली, उनका लंच का ठिकाना नहीं है, डिनर का ठिकाना नहीं है, ब्रेकफास्ट का ठिकाना नहीं है, नींद से उठेंगे तो ब्रेकफास्ट के लिए उनको खोजना पड़ता है, ब्रेकफास्ट हो गया तो लंच के लिए फिर खोजना पड़ता है, कोई गारंटी नहीं है। हमारा ऐसा होता है क्या? अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमको मालूम है लंच अभी कहाँ मिलने वाला है मुझे, और लंच के बाद डिनर भी कहाँ मिलने वाला है, आइडिया पूरी हमारी फिक्स है, इसलिए हम लोग आराम से यहाँ बैठे हैं। अगर आपको नहीं पता होता कि आपका ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कहाँ मिलेगा कौन देगा मालूम नहीं है, तो हमारी मन की अवस्था कैसे रहेगी? उसी प्रकार की अवस्था में वो लोग निकलते हैं, केवल पांडुरंग के भरोसे। और पांडुरंग भगवान, क्योंकि उनका रिश्ता पांडुरंग भगवान से है, पांडुरंग भी उनका रिश्ता रखते हैं। कैसे रखते हैं? कई लोगों को, ट्रस्टों को, धनियों को, संस्थाओं को प्रेरणा देते हैं, जाओ उधर दिंडी के रास्ते में भंडारा लगाओ, दिंडी के जहाँ पर रिंगण होता है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था करो। तो कई लोग ऐसे वहाँ पर हमारी तरफ से भोजन, हमारी तरफ से ड्रिंक, हमारी तरफ से पानी की व्यवस्था, नींबू शरबत की व्यवस्था, हाँ भाकरी की व्यवस्था, झुनका भाकर की व्यवस्था, सब रास्ते में होती रहती है। ये केवल पिट्ठल भगवान के श्रद्धा के आधार पर चलता है, निकलने वाला आदि भी उनकी श्रद्धा लेकर चलता है, और विट्ठल भी उस श्रद्धा का आदर लेकर, आदर करके सबकी व्यवस्था कर दे जाते हैं, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता उसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को, ये भक्तों को उनकी जो गौरव है ना वो आपको देखना चाहिए। वो रुकते नहीं बीच में किधर, कितने लोग हमारे पास फ्रैक्चर से आते हैं, कितने लोग कट होके बड़ी गहरी जख्म लेके आते हैं, कितने लोग को खाना पीना ठीक से कभी मिला नहीं समझो तो हाइपोटेंशन में आते हैं, डिहाइड्रेशन में आते हैं, है ना, छल में शरीर में जल कम हो जाता है, कितने लोगों को दस्त लगते हैं, कितने लोगों को बुखार आता है, कितने लोगों को पैर में दर्द, पाँव में दर्द, सर में दर्द होता है, नींद नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो हारते नहीं हैं, अपने प्रिय आराध्य विट्ठल भगवान को मिलने के लिए चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो भी एक दिन दो दिन नहीं 17, 18, 20 दिन तक चलते रहते हैं। और अभी जिसके लिए निकले हैं, क्या उसकी गारंटी है क्या कि वहाँ पहुँचने के बाद दर्शन मिलेगा? आप ना ऐसा सोचो कि आप लाइन में हो और आपको 2 सेकंड में वो भगा रहे हैं, आपको मालूम है टीवी पे दिखता है ना, 2 सेकंड भी वहाँ रुकने देते नहीं। तो 2 सेकंड को अगर 24 घंटे को 2 सेकंड से आप गुणित करेंगे तो कितना नंबर आएगा? तो एकादशी के दिन 24 घंटे में कितने लोगों का दर्शन होगा उसका भी एक नंबर है फिक्स, उसके ऊपर दर्शन नहीं हो सकता है। बाकी लोग एकादशी के बाद में, एकादशी के पहले, दशमी में या द्वादशी में दर्शन होगा उनका, लेकिन वही लोग वहाँ पहुँचने के बाद में इतनी अनिश्चिति के साथ में लाइन में खड़े रहते हैं और तीन तीन दिन भी लाइन में खड़े रहते हैं। लाइन में भी उनको पता नहीं है भोजन कहाँ मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। लाइन में भी उनको पता नहीं है कि कहाँ भोजन मिलेगा। और लाइन में और एक डिफिकल्टी है, लाइन में लैट्रिन और यूरिन करने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती है। अगर आप जाएंगे आपका नंबर शायद निकल जाएगा, शायद आपको पुलिस अंदर लेगा ही नहीं, क्या आप लाइन में घुस के जा रहे हो बोल के आपको अंदर लेगा ही नहीं, वो तो कैसे चलते रहेंगे वो। मैंने ये सब मेरे आंखों से देखा है, हर कैंप में देखा है। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास और इतनी तपश्चर्या, इस विश्वास के साथ के मुझे देखना है भगवान को। और बहुत लोगों को एकादशी में दर्शन नहीं होता है, बहुत लोगों को दर्शन ही नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, कलश को देखते हैं मंदिर के, और देख के प्रणाम करते हैं, दंडवत रास्ते पर सो के और श्रद्धापूर्वक चले जाते हैं। मुंबई के लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या तकलीफ है, 15 दिन चलना, खाने की व्यवस्था नहीं, ये नहीं, उसके बाद में उधर जिसके लिए जा रहे वो भी नहीं मिल रहा है, सब बेकार है ये सब चीज़, ऐसा समय कौन बर्बाद करेगा, इस फुलिशनेस, ये मूर्खता है, ऐसे आप लोग, हम लोग मुंबई के लोग बोलेंगे। लेकिन गाँव के लोगों में अभी भी श्रद्धा है, वो सब कुछ छोड़कर नुकसान सहन करते हुए भी। और आप देखिए हमारे वार्ड में आके देखिए कैसे कैसे लोग आते हैं और क्या क्या तकलीफ सहन करते हैं। तो उनकी जब आप सेवा करेंगे तब विट्ठल भगवान प्रसन्न होंगे आपसे। और शायद आप वार्ड में नहीं, वार्ड में होंगे, शायद ओपीडी में होंगे, शायद प्रसाद बांटने में होंगे, जहां जहां पर भी आप श्रद्धा से इन लोगों का महात्म्य, इन लोगों का गौरव, इन लोगों की महानता जानकर उनको आदरपूर्वक सेवा करेंगे तो विट्ठल भगवान प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से जाने वाले लोगों के मन में एक भावना होती है, अरे गरीब बेचारे, उनकी सेवा में हम जा रहे हैं, हम तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और हमारे पास सुविधा है, हमारा पैसा है, दवा है, खाने की व्यवस्था है, ये बेचारे आ रहे हैं, तो हमारे अंदर एक क्या है, क्या कहते हैं उसको, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम लोग कुछ बड़े हैं, एक अहम पैदा होता है। लेकिन हमेशा हमारे कैंप में हम लोग ये बात कहते हैं जो हमारे गुरुजनों ने हमको बताई है कि हम लोग उन पर उपकार करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग ये जानते हुए जा रहे हैं कि हमको उनकी सेवा करने की जरूरत है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये भी एक आप कोई पट्टी लगा रहे हैं, लेकिन वो पट्टी लगा रहे हैं मैं बड़ा हूं वो छोटा है ये भावना से लगा रहे हैं, या ये पट्टी लगाना मेरा सौभाग्य है, ये मेरे जीवन की, मेरे पढ़ाई की परिपूर्णता है, ये पट्टी लगाकर मुंबई में मैं पैसा कमाता हूँ और यहाँ पर फिर पट्टी लगाकर जो पुण्य कमा रहा हूँ वो किसी भी रुपये में उसकी गिनती नहीं हो सकती है। ये भावना अगर आपके मन में रहेगी तो उस पट्टी लगाने का पूरा पुण्य और पूरा लाभ, आध्यात्मिक उन्नति आपको मिलेगी। इसलिए मैं शुरुआत से ये कह रहा हूँ कि धाम में जाना एक चेतना की बात है, भावना की बात है। धाम में आप कैसे जा रहे हो उस पर आपका परिणाम, आपका लाभ, वो सब निर्भर रहता है। इसीलिए किसी भी भौतिक हेतु को मन में रखते हुए पंढरपुर में मत जाना कि पंढरपुर में जाने के बाद मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, इस प्रकार से मिलना चाहिए, मैं फलाना व्यक्ति हूँ मुझे ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसी किसी प्रकार की अपेक्षा मन में गिनती करके मत जाना पंढरपुर। क्योंकि जितनी अपेक्षा करके आप जाएंगे और जितना अपने लिए कुछ समझ कर जाएंगे उतना आपका लाभ कम 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 होते जाएगा। और जितना आप निरपेक्ष होकर एक सेवक बनकर जाएंगे उतना आपका लाभ द्विगुणित और त्रिगुणित और अनंत गुणित हो जाएगा। यही धाम में जाने का रहस्य है। आप लोगों को बता दूं शास्त्र में क्या क्या लिखा है, पांडुरंग महात्म्य, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कि पंढरपुर के क्षेत्र में कदम रखते ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही लाभ पांडुरंग के दर्शन करने से भी है। समझो दर्शन आपका मिस हो गया, लेकिन जब तक आप पंढरपुर के क्षेत्र में रहकर वहां की सांस ले रहे हैं, वहां का पानी पी रहे हैं, जो लाभ आपको होना है ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि चंद्रभागा का जो किनारा है ना, उसके कण कण में पांडुरंग भगवान है। चंद्रभागा निकलती है भीमाशंकर पर्वत से, लेकिन वो चंद्राकार हो जाती है पंढरपुर क्षेत्र में, इसलिए ना इसलिए नाम चंद्रभागा कहा गया है। जो चंद्राकार रूप में वहां पर जा रही है उसमें, उसके पास जाना, उसके किनारे में चलना, उसके जल को स्पर्श करना, उसके जल का आचमन करना, उसमें स्नान करना, ये करने से आपको सारे लाभ एक ही हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के संचित नष्ट हो जाएंगे और आप जीवन के अंत में अपने आप को भगवान के धाम में पाएंगे। और वहाँ पर लाइन नहीं होती है, आप वहाँ पर चंद्रभागा में जाके स्नान कर सकते हैं। दशमी में भी लाभ है, एकादशी में भी लाभ है और द्वादशी में विशेष लाभ है, क्योंकि द्वादशी के दिन सारे देवतागण वहाँ पर आकर चंद्रभागा में स्नान करते हैं। तो आपको दिखेंगे नहीं वो, लेकिन उनके उपस्थिति में आप लोगों को स्नान करने का भाग्य प्राप्त होगा अगर द्वादशी में आप जाएंगे। और समझो द्वादशी का स्नान भी करने को नहीं मिला, इतने सेवा में मग्न रहे पुंडलिक की तरह, तो निश्चित बात समझना पुंडलिक के जैसे भगवान ने दर्शन दिया वैसे आपको भगवान की अनुभूति साक्षात्कार जरूर होगा। मेरी आपको विनती है, जैसे हम लोग धाम में जाने के लिए अभी आप छतरी लेके जाएंगे, जूता पहन के जाएंगे, कुछ कपड़े लेकर जाएंगे, अपना कोई दवाई लेकर जाएंगे, कुछ सामान चाहिए आपको वो लेकर जाएंगे, अपनी अपनी सुविधा लेकर जाएंगे, बैग भरेंगे, वो एक हाथ में पकड़ने का बैग है, एक बैग भरना है आपको हृदय का, यहाँ पर भी भरना है बैग। क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर तैयारी, भावना की तैयारी होनी चाहिए, किस भावना से मैं जाऊँगा, किस भावना से मैं सेवा करूँगा। और ये भी नहीं कि मुझे ये सेवा लास्ट टाइम दिया था बढ़िया सेवा था, इस टाइम तो घटिया सेवा दिया मुझे, है ना, ऐसा होता है ना कि मेरे भी एक पोजीशन है, मुझे भी ऐसी सेवा मिलनी चाहिए जो मेरे योग्य है, जो मिले वो सेवा लेनी चाहिए। भगवान के सामने जाएंगे ना, जैसे अब हाथी के सामने जाएगा, चींटी कोई जाएगी बोलेगी पंजा लड़ाओगी, तो हाथी क्या बोलेगा उसको, बोले क्या बोला, हंसू के रो चींटी मुझे पंजा लड़ाने की चैलेंज दे रही है। वैसे भगवान के सामने अगर मैं डॉक्टर के रूप में जाऊँगा, धनी के रूप में जाऊँगा, पढ़ा लिखा के रूप में जाऊँगा, अरे सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, उनके सामने जाकर उसकी चीज़ का गर्व करने से क्या होगा, बच्चा ने आपको चॉकलेट दिया, मैंने मेरे पैसे से लाया पापा, तो पापा हंसेगा, अरे जो मैंने पॉकेट मनी दिया था उससे सेविंग करके ये चॉकलेट लाया है। तो उसी तरह से भगवान के सामने आप जा रहे हो सेवा करने के लिए, तो किसी भी हमारे पद की, धन की, पोजिशन की गर्व नहीं वहाँ पर करना चाहिए, वहाँ पर निरपेक्ष होकर जो सेवा भगवान देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सच्ची प्राण प्रभु आपको सेवा नहीं दे रहे हैं, पुंडलिक भगवान, आप पंडरपुर के भगवान आपको सेवा दे रहे हैं, ये भाव आपका होना चाहिए। आपके लिए वो पांडुरंग भगवान के प्रतिनिधि होंगे, जिनको यहाँ पर गुरुजी के द्वारा चुना गया कि आप अभी पंडरपुर का नेतृत्व करो, तो गुरुजी की कृपा से वो पांडुरंग भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए उनको प्रसन्न करना अपनी सेवा के माध्यम से पांडुरंग को प्रसन्न करना ही है। वो खुद ये समझते नहीं कि वो पांडुरंग है, ये बात ध्यान रखना, वो उस गर्व में नहीं आएंगे, अभी प्रभु जी ने लेक्चर में बताया तो सब लोग मुझे पांडुरंग की तरह देखेंगे तो मैं भी उनका नमन स्वीकार करूंगा ऐसा भाव नहीं उनका, वो भी सेवक के रूप में जाएंगे जिस भाव में आप जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ लोगों की सेवा गुरु की इच्छा से अलग प्रकार की होती है, कुछ लोगों की अलग इच्छा से होती है, और वो आसान काम नहीं है नेतृत्व करना, बहुत कठिनाई होती है उसके अंदर, आपके उनके मीठे मीठे गुल दिखाई पड़ेंगे लेकिन कष्ट उनको पता है शुरुआत से बाद में एंड तक क्या होगा। तो वो आपके लिए पांडुरंग भगवान के प्रतिनिधि होंगे और वो जो कहेंगे, जिस समय कुछ बदली करेंगे, इमरजेंसी को देख कर चेंज करेंगे, आपको यहाँ से वहाँ भेज देंगे, वो बीमार हो गया वहाँ पर चले जाओ, तो आपको एकदम धन्यवाद की भावना से उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सेवा में कभी कभी इमरजेंसी आती है, अभी छत उड़ जाता है, बारिश आ तूफान आ जाता है, कुछ खाना नहीं बनता है उस समय, फिर लोगों को बांट के हमको थोड़ा सा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे बरसाना कैंप में कैसा होता है, बारिश का मौसम तो है नहीं लेकिन बारिश 100% होती ही है, एक दो बार तो होती है तूफान आंधी की तरह, तो उस समय जो भी स्थितियाँ उत्पन्न होती है सब लोग मिलजुल के उसमें हाथ बटाकर उसको निपटाते हैं। तो हर समय हर पंडरपुर का कैंप जो है वो एक अभिनव कैंप है, ज़रूरी नहीं कि जो पिछली बार हुआ वही इस बार होगा, कुछ नया नया भगवान आपको अनुभूति देंगे, कुछ नया नया साक्षात्कार आपको देंगे, कभी देंगे आपको वो, जब हर समय वहाँ पर आप पांडुरंग भगवान के साथ में आदान प्रदान के मूड में रहेंगे तो पांडुरंग भगवान हर जीव को नए नई अनुभूतियाँ देंगे, नए नए साक्षात्कार देंगे और आपको धन्य करेंगे, आपको लगेगा कि मैं पांडुरंग भगवान को मिलके आया हूँ, उनका दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन मैं हृदय से उनका आदान प्रदान स्वीकार करके आ रहा हूँ, ये अनुभूति आपको होगी। और आप नाराज नहीं रहेंगे कि अरे ये दर्शन नहीं हुआ, रे सब कुछ हो गया लेकिन दर्शन नहीं हो पाया, दो बार गया लेकिन दर्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगेगा आपके मन में, क्योंकि आपका प्रधान उद्देश्य उनका दर्शन करने का नहीं होगा, आपका प्रधान उद्देश्य वारकरियों की सेवा होगी, जो असहाय हैं जो आपके पास आ रहे हैं, साक्षात पांडुरंग भगवान उनके रूप में आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, और आपको सेवा दे रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या उसका मतलब है? जैसे हम लोग, इसकी चेतना क्या है, इसका भाव क्या है? हे भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ, यही बोल रहे हैं जब पुकार रहे हैं। तभी पुकार कर क्या, क्यों पुकार रहे हैं उनको? बेकार में पुकार रहे हैं, किसी को बेकार में पुकार रहे हैं? अपने कुछ काम होगा ना आपका, हाँ। तो ये काम क्या है? हे भगवान मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप मुझे अपनी सेवा दीजिए। और वो सेवा देंगे, तब आप सेवा छड़ के उनके दर्शन करने के भागेंगे तो बोलेंगे बेटा तुमने सेवा मांगा था, मैंने सेवा दिया, तो छोड़ के मेरे दर्शन के लिए क्यों भाग के आ रहे हैं? जा सेवा कर, इधर क्या कर रहे हो? एक वैसे व्यक्ति प्रभुपाद जी को मिलने के लिए दूर से वृंदावन आया, भक्त उनका, तो उनको लगा मुझे वृंदावन में देखते प्रभुपाद कितने खुश हो जाएंगे, तुम वृंदावन में आ गए। प्रभुपाद ने पहले बोला तुमको मैंने बॉम्बे में सेवा दिया तो छोड़ के वृंदावन में क्यों आए हो, चलो तुरंत बॉम्बे जाओ। उसका मतलब क्या है? गुरु जी की सेवा जहां होती है वही वृंदावन प्रकट हो जाता है, वही धाम प्रकट होता है, उसको कहते हैं प्रभु दत्त देश। जहां पर भगवान के शुद्ध भक्त गुरु महाराज आपको सेवा देते हैं उसी जगह को प्रभु दत्त देश कहते हैं, और उसी जगह से स्वयं को प्रकट करते हैं आपके लिए सेवा के माध्यम से। तो पंढरपुर के क्षेत्र का महात्म्य यही है, सेवा। और सेवा के माध्यम में आपको पांडुरंग रखुमाई का दर्शन होगा, उनकी अनुभूति होगी, और आपका जीवन धन्य होगा और संपृक्त यानी सैचुरेटेड हो जाएगा कृपा से। और रही बात बाकी सुविधाओं की, हम लोग वहाँ पर प्रसाद सेवा करने वाले हैं, हम लोग वहाँ पर मेडिकल सेवा करने वाले हैं। मेडिकल सेवा में भी कई प्रकार हैं, एक इमरजेंसी वार्ड होगा, एक ओपीडी होगी, और भी कुछ इमरजेंसी होगा वो करेंगे, कुछ को लोगों के माइनर ऑपरेशन भी करेंगे, फ्रैक्चर भी सेटल करेंगे, सूचर्स भी लगाएंगे, एक माइनर ओटी होगा वहाँ पर, एक जनरल वार्ड होगा जहाँ पर आईवी लगाया जाएगा, पट्टी की जाएगी, एक जनरल ओपीडी होगी वहाँ पर, देखने के बाद में कुछ बेसिक टेस्ट करके कुछ दवाई दी जाएगी, और एक भोजन का प्रबंध होगा सबके लिए। फिर और प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं भगवद गीता आदि, अनेक छोटे मोटे ग्रंथ हैं, भगवत दर्शन पत्रिका है, उनका वितरण होगा वहाँ पर हजारों लोगों को। और एक सेवा होगी, हर रोज हमारे भक्त लोग कीर्तन मंडली लेकर पूरा हमारे कैंप के यहाँ से निकलेंगे, पूरा घूमते घूमते कीर्तन करते करते पूरे पंढरपुर के भगवान के मंदिर को गोल प्रदक्षिणा करके, कलश का दर्शन करके फिर लौट के आएंगे। ये हमारी सेवा है, मेडिकल, अनेक प्रकार की मेडिकल सेवा, भोजन सेवा, पुस्तक वितरण सेवा, और हरिनाम संकीर्तन सेवा। इसमें किसमें भी आपको लगाएंगे, चेंज भी करते रहेंगे, आप बड़े प्रेम से भाग लेना उसके अंदर। ऐसे कहते हैं कि पंढरपुर क्षेत्र जो है ना उसको दक्षिण द्वारका कहा गया है, भू वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ, वहां पर कोई कुंठता नहीं है, वहां पर कोई कष्ट नहीं है, वहां पर कोई जन्म मृत्यु की बाधा नहीं है, वहां पर पहुंचने से ही जन्म मृत्यु की बाधा हर जाती है, नष्ट हो जाती है। और वैकुंठ में एक एक कदम जब कोई चलता है तो उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ एक एक कदम के साथ करने का पुण्य प्राप्त होता है। वैकुंठ में जब कोई सोता है तो उसको योग निद्रा का लाभ मिलता है। योग निद्रा मतलब क्या है? नींद ने भी सतत भगवान का ध्यान और स्मरण, उसको योग निद्रा कहते हैं। आपको शायद वहां के नींद में भगवान का सपना भी नहीं आएगा, ना भगवान की याद आएगी, रात को सोते वक्त आएगी, बाद में सुबह उठने के बाद आएगी, बीच में क्या हुआ मालूम नहीं ऐसा हो सकता है। फिर भी वहां सोने से आपको योग निद्रा करने का लाभ मिलेगा, ये शास्त्र में लिखा है। तो वहां का तो हर एक सांस धन्य है, वहां के जल का एक एक घूंट धन्य है, वहां के प्रसाद का एक एक कर्ण धन्य है। और रही बात दर्शन करने की, पत्रा शेड में जाइए, वहां पर कई टीवी लगे हुए हैं, वहां लाइव दर्शन है भगवान का, क्या हो रहा है आपको वहां दो सेकंड में भगा देंगे। यहां पर 15 मिनट खड़े रहो, पूरा अभिषेक देखो, पूरी आरती देखो, पूरा प्रणाम करो, जमीन पर झुक के प्रणाम करो, जो मर्जी है करो। पहले नहीं था, जब हम 90 में गए थे, CCTV तभी नहीं था किधर, अभी पैदा हो गए। तो टेक्नोलॉजी आपके लिए आपकी सेवा में है। अंत में आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पंढरपुर में पहुँचने के बाद में, जैसे ही पहुँचेंगे ना पंढरपुर क्षेत्र में, वहीं से पंढरपुर भगवान की प्रार्थना कृपा याचना करना शुरू करना। रात को 11:30 बजे पहुँचेंगे या सुबह 5 बजे पहुँचेंगे, जैसे ही पहुँचेंगे वहीं से पंढरपुर भगवान को प्रणाम करते हुए शुरू करना अपनी यात्रा। और कदम कदम पर हर क्षण जितना दिन रहेंगे, जितने समय घंटे दिन रहेंगे, उनकी मन में कृपा याचना करते रहना। वही आपकी यहाँ का वहाँ की यात्रा का यश है, उनको ना भूलना। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, एक दान देगा देवा, क्या बोलते हैं आगे, तुझा विसर न हुआ। ये तो पूरे जीवन के लिए बोल रहे हो, हम केवल पंडरपुर की यात्रा की बात कर रहे हैं। अगर पंडरपुर में जाकर उनकी उनको भूल जाएंगे, उनको याद नहीं रखेंगे, तो फिर पंडरपुर जा क्यों रहे हम लोग। वो तो कह रहे हैं बम्बई में भी, पुणे में, जहां पर हो गए अहमदनगर में, वहां पर भी एक दाना देगा देवा तुझा विसर न हुआ, ऐसे पूछ रहे हो। और हम लोग पंडरपुर जा रहे हैं, उनके ही घर जा रहे हैं, उनके ही घर जाकर उनको ही नहीं याद करेंगे। और कोई वाद विवाद में इधर उधर, मुझे कोई लड्डू नहीं मिला, प्रसाद में स्वीट था मुझे नहीं मिला, मैं इतना सेवा कर रहा था, लेट आया तो मुझे स्वीट ही नहीं मिला है, क्या है, सब व्यवस्था ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इस भाव में रहेंगे तो क्या हासिल किया हमने। क्योंकि मूल तत्व से, मूल उद्देश्य से पंडरपुर में हम लड्डू खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। पंडरपुर में हम जा किस लिए रहे हैं, पंडरपुर में जा रहे हैं वारकरियों के लिए, सेवा करने के लिए। इस वाक्य को हृदय में पत्थर की लकीर की तरह लिख लो, व्हाई आर यू डूइंग समथिंग, आप जो कुछ करने जा रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका पहला आप कारण समझो, फिर आपको लड्डू मिलना मिलने पर भी दुख नहीं होगा। तो ये भाव सबसे कीमती है, सबसे जरूरी है, और ये भाव आपको यहीं से पैदा करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, वहां जाकर कभी भी आप समझो पुणे जाना है तो पुणे जाने की बैग, वहां पुणे जाने की बैग भरते, बाद में भरते क्या आप? पुणे जाने के लिए यहीं से प्लानिंग करते हैं, यहीं से बैग भरते हैं, पूरा तैयारी के साथ लिख के सब भर के सब लेके जाते हैं, दवाई भी 7 दिन की पूरी लेके जाते हैं जितना दिन रहना है। उसी तरह से अगर पंडरपुर जाना है तो पंडरपुर के लिए जो भाव जरूरी है वो आपको यहीं से बटोरना है, आज से ही बटोरना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं जाने का टिकट तो निकल चुका है मेरा, सब व्यवस्था हो चुकी है, सब सेवा भी मिल चुकी है, लेकिन भगवान मुझे वहां तक पहुंचाना, क्योंकि आज आज में और वहां पहुंचने में 3-4 दिन का समय है, उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, मेरी माँ बीमार पड़ सकती है, मेरा बच्चा बीमार पड़ सकता है, मेरी छुट्टी सैंक्शन की हुई कैंसिल हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है। हर कैंप में देखते हैं हम लोग, कितने लोगों का नाम रहता है एंड मौके पे कुछ लोग नहीं आ सकते हैं किसी कारण से, वहाँ पहुँचने के लिए संतों की और भगवान की कृपा की आवश्यकता है। वो आपको आज से ही वो प्रार्थना एप्लीकेशन देना शुरू करना है कि भगवान मैं जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ, मुझे कृपया वहाँ पहुँचाइए, और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा मुझे अच्छी चेतना में रखिए, प्लीज़ भगवान मुझे अच्छी भावना में रखिए, मुझे स्वार्थी भावना से मुक्त कीजिए वहाँ पर, मुझे किसी निजी लाभ की भावना से मुक्त कीजिए, मुझे अपनी सेवा की भावना में रखिए, और एक ही दाना देवा देगा देवा तुझा विसरण हुआ, जब मैं आपकी वहाँ सेवा कर रहा हूँ मुझे आपके हर क्षण हर पल याद आती रहे भगवान, और आपकी इच्छा होगी तो दर्शन दे देना, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपकी याद ज़रूर मुझे बनाए रखना, क्योंकि जहाँ उनकी याद है वही वो उपस्थित है। और वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए और धक्का मुख में झगड़ा किया तो मुख दर्शन के सामने से गुजर गए और दर्शन किया ही नहीं, क्योंकि झगड़े के भाव में गए, तुमने धक्का क्यों मारा मुझे, तो सामने भगवान होकर भी दर्शन नहीं होगा, है ना। अल्टीमेटली दर्शन क्या है, दर्शन भी भाव की चीज़ है, भाव होगा तो दर्शन होगा, भाव नहीं होगा दर्शन कैसे होगा, वहाँ पर भी तस्त परेशान रहेंगे तो दर्शन कैसे होगा, मैकेनिकल काम होगा, वहाँ जाएंगे मत्था वो आपने टेकेंगे, आपका टिकवाएगा वो पुलिस और आपको भाग बाहर कर देगा। तो ये वो एक सेकंड में ये भाव कैसे बटोरेंगे आप, पहले से होगा तो आप वहाँ पर वो एक क्षण के लिए भी भाव से आपका मत्था वहाँ टिकेगा। अल्टीमेटली भक्ति जो है ना ये सब भाव का खेल है, भाव है तो सारी दिव्य चीज़ें आपके लिए प्रकट हो जाएंगी, प्रस्तुत हो जाएंगी आपके लिए, और भाव नहीं है तो सब कुछ जीरो है। आप कुछ भी करो, बड़े से बड़ी सेवा करो, लेकिन भाव नहीं है तो सब शून्य है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है आप छोटी सी सेवा करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिल से करो और भाव से करो, क्योंकि हमारे भगवान का नाम क्या है, भावग्राही जनार्दन। वो किसी भी चीज़ के अंदर कितना बड़ा काम किया वो देखते नहीं है, किस भाव से किया वो देखते हैं। इसका प्रमाण क्या है, उनको दुर्योधन ने खाना खाने के लिए बुलाया था, गए क्या वो खाना खाने के लिए, 56 प्रकार का भोग बनाया था उन्होंने, बड़े आदमी के पास भोजन के लिए आता तो कम से कम 50-60 आइटम होते हैं, लेकिन गए क्या भगवान वहां पर, नहीं गए वो, क्योंकि दुर्योधन का भाव कपटी था, स्वार्थी था, कुछ हेतु था उसके अंदर, कुछ उनको मैनिपुलेट करना था पॉलिटिकल दृष्टि से, इसलिए भगवान गए ऐसे कि उसके पास ही जा रहे हैं, उधर तक गए भी लेकिन दरवाजे से आगे चले गए। और कहाँ गए? विदुर को झोपड़ी में गए, उधर तो पता भी नहीं था कि आने वाले, ऐसे ही पटक गए, टपक गए वहां पर। तो विदुर की पत्नी एकदम परेशान हो गई, फिर क्या करूँ अभी घर में कुछ है नहीं, ढूंढते ढूंढने लगी और ढूंढने ढूंढे केला मिला, तो केला भाव इतना था कि भगवान मेरे घर पे आ गए, इतना आनंद और इतना प्रेम था सेवा करने का। तो केला छिलका निकाला, केला फेंक दिया और छिलका भगवान के हाथ में दिया, और भगवान भी एकदम मजे से छिलका खा रहे हैं। एक केला हो गया, छिलका खा के केला फेंक दिया, दूसरा केला छिला, केला फेंक दिया और छिलका खिलाया भगवान को। तब तक विदुर जी आ गए और बोलते, पगली क्या कर रही हो तुम, भगवान को छिलका खिला रहे हो, केला फेंक रही हो, कैसी मूर्ख हो तुम। भगवान बोलते हैं, डिस्टर्ब मत करना, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, जिस भाव से वो मुझे दे रही है वो भाव से मैं स्वीकार कर रहा हूँ, चाहे केला हो छिलका, मुझे क्या मतलब उससे, मैं प्रेम को लेने के लिए आया हूँ, प्रेम दे रही है मैं ले रहा हूँ प्रेम। और वहां पर प्रेम नहीं था इसलिए वहां पर नहीं गया मैं, तो क्या मतलब हुआ, भावग्राही, भाव ग्रहण करने वाले भगवान है हमारे, उनको आप किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं कर सकते, उनको आप केवल भाव से प्रसन्न कर सकते। इसलिए उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, लक्ष्मण को गुस्सा आया था उस समय, क्या कर रही है ये भिल्ला औरत, जंगल की औरत, पागल औरत क्या कर रही है, मेरे भगवान को जहां पर मंत्र बोल के घंटी बजाकर इतना प्रेम से अलग से भोग लगा जाता है, उसको वो खाए हुए बेर खिला रही है। तो भगवान ने लक्ष्मण को कहा, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, अभी चुप रहो, अभी खाने दो मुझे। उसी समय शबरी अयोध्या धाम पधार गई, उसी समय भगवान के सामने उसका मुक्ति हुआ, भगवान के आंखों के सामने वो भगवान के दिव्य धाम में प्राप्त हो गई। तब लक्ष्मण जी को भी समझ में आया, ये सब लीला है भगवान की, भगवान बता रहे हैं बार बार, मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्रसन्न करना है तो सच्चे भाव की आवश्यकता है, और वही भाव लेकर आप जाना। ये मत समझना कि चार दिन का कैंप है, बरसाना कैंप 15 दिन का होता है, शायद इसमें कम मिलेगा, ज़्यादा लाभ उधर मिलेगा, ऐसा गणित मत करना आप, आपको सारे लाभ भाव के ऊपर मिलेंगे, और उसके लिए एक दिन, एक घंटा, 4 घंटे, 4 दिन, ये कोई हिसाब किताब वहाँ पर नहीं होता है। हर धाम भगवान का धाम है, हर धाम की लीला अलग अलग है, और भगवान आपको कृपा करने के लिए समर्थ है, वो आपका जीवन संपूर्ण कर सकते हैं 1-2 मिनट के अंदर, अगर आपका भाव सही है। और हमारे गुरुदेव एक और एक बात बताते हैं कि जिनकी सेवा आप करने जा रहे हो वो हमारे लिए पूजनीय है और उनको प्रसन्न करना है, लेकिन जो लोग आपके साथ सेवा करने के लिए वहां जा रहे हैं वो भी उतने ही पूजनीय है जैसे जिनकी सेवा करने आप जा रहे हो वो लोग हैं। तो केवल मैं उनका आदर करूंगा जिनकी सेवा कर रहा हूं, जो साथ में सेवा कर रहे हैं उनके अंदर वाद विवाद होगा तो भी चलेगा। आप लोगों को देखना है कि वो लोग जितने गौरवशाली हैं उतने आप लोग भी गौरवशाली हो जो यहां से इतना समय निकालकर वहां पर सेवा करने जा रहे हो। इसलिए सहयोग देना बहुत जरूरी है, साथ वालों का भी आदर करना, उनके साथ बैठना उठना सोना आपको होना है 4-5 दिन के लिए, उनके साथ भी प्रेम से। वो वारकरी लोग क्या करते हैं आपने देखा है, कभी भी देखा है जब उनका कीर्तन खत्म होता है तो क्या करते हो, किसको पता है, देखा है आपने कभी उनका, वो महाराज जी खड़े रहते हैं तानपुरा लेके और वो बोलते हैं गाते हैं, बोलते हैं गाते हैं, फिर वो समाप्त होता है कुछ समय के बाद में। उस समय क्या होता है, जितने भी बैठे हैं श्रोतागण वो तुरंत एक दूसरे के पांव छूना आरंभ करते हैं, तुरंत ही। आप देखिए उधर वो कीर्तन का, जो महाराष्ट्र का कीर्तन का एक भाव है कि ये सत्संग से इन लोगों को सबको लाभ हुआ है, उनके चरण की धूली मुझे लेनी चाहिए ताकि सबका लाभ भी मुझे मिलेगा। नम्रता का भाव है, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव है कि मैंने सत्संग जो किया वो इन्होंने भी किया तो ये मेरे लिए आदरणीय है। वो तो है बोलने वाले लेकिन जो सुनने वाले वो भी आदरणीय है। तो जिस प्रकार से मैं सेवा करने जा रहा हूँ वारकरियों की, वैसे ये लोग भी सेवा करने आए, ये लोग भी सेवा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ रवि इतना कर रहा है, आप कर रहे हो, डॉक्टर लोग कर रहे हैं, नर्स लोग कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, कभी खाना मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, बारिश आ रही है, किसी को बुखार आ रहा है, फिर भी सेवा कर रहे हैं, तो वंदनीय होए कि नहीं वो, तो उनका भी आदर करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले दंडवत किया क्योंकि आप सब लोग पंडरपुर जा रहे हो, भगवान के धाम में जा रहे हो, भगवान के सामने कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं होता है, सब लोग वंदनीय हैं जो भगवान की सेवा में जा रहे हैं, सब लोग वंदनीय हैं। तो ये सब भावों को आप दिल में रखना, हाँ कुछ वहां पर गड़बड़ हुआ ना, कुछ गुस्से वाली बात हुई, मत करना गुस्सा, मत नाराज होना, अप्रसन्न मत होना, मन को संतुलित रखना, क्योंकि आप लोग वहां पर किसी भी कारण के लिए नहीं जा रहे, केवल भगवान के भक्तों की सेवा के लिए जा रहे हैं, ये आपका एकमेव उद्देश्य है। बाकी कोई आपका उद्देश्य नहीं है। इसलिए बाकी छोटी मोटी बातों के लिए परेशान मत होना। जब तक परेशान हो जाएंगे ये समझना कि आपका रेडियो का एंटीना हिल जाएगा और कृपा का जो चैनल है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा आपका। होता है ना रेडियो, वो ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है तो ठीक से आवाज़ आ रही है, थोड़ा आपने इधर घुमाया तो ट्र चालू हो जाता है, वही आवाज़ है लेकिन वो नहीं आ रही है आपके पास, क्योंकि कांटा हिल गया अभी। तो जैसे आप परेशान हो जाएंगे कांटा हिल जाएगा आपका, और जो आपको मिलना है वो मिलना बंद हो जाएगा, कांटा लाइन पे आ जाएगा, वापस आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो सब बात जो है वो चेतना पर आधारित है। इसलिए मैं आप सबके लिए पंढरपुर के महाराज भगवान विट्ठल जी भगवान को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग उनकी भर भर की कृपा लेकर लौट के आए और किसी का भी अपराध ना करें और किसी का भी अपराध करके घाटा नुकसान लेकर यहाँ पर ना आए, क्योंकि वहाँ पर जाकर अगर बारकरियों का साथियों का अगर अपराध करेंगे तो जो मिला है वो भी नष्ट हो जाएगा आपका, जीरो जीरो वापस लौट के आएंगे। तो मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से कि आपसे हाथ से कोई झगड़ा, कोई अपराध, कोई विरोध, कोई परेशानी ना हो, किसी को भी ना हो, आपको भी ना हो, और आप केवल सेवा ही सेवा करें, अच्छे भाव में करें, निरपेक्ष भाव से करें, भगवत भावना से करें, उनके स्मरण में करें और उनकी पूरी कृपा जितनी बटोरनी है जितनी मिल सकती है सारी कृपा लेकर अपना जीवन धन्य करके फिर लौट के आए अपना नित्य दैनंदिन कार्यक्रम करने के लिए फिर लौट के आए। यही मेरी भगवान के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग नहीं बैठे हैं, जो आने वाले हैं पंढरपुर में, सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और कोई अपघात ना हो वहाँ पर, कोई दुर्घटना ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे आपका मन विचलित हो, आपका मन भगवान की भक्ति में ही एकाग्र रहे, एक चित्त रहे और समान चेतना से आप शुरू से लेकर अंत तक उन्हीं का ध्यान करते हुए सेवा करने में सफल हो, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। श्री विट्ठल भगवान की, श्री रुकमाई माता की, श्री भक्तराज पुंडलीक की, श्री चंद्रभागा नदी की, पंढरपुर भू वैकुंठ धाम की, सबके गुरुजनों की, हरे कृष्णा।